मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एफ़ईआईएस के आज 21 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी अंकित राज का, जिन्होंने एकेडमी की 7 मार्च से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अंकित राज नवी मुंबई के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज सोमवार है और आपको ध्यान होगा कि सोमवार को अक्सर मैं कोविड की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा किया करता था, लेकिन इस आज के वाले सोमवार से अब मैंने ये फैसला किया है कि अब कोविड के समाचारों को बंद कर दिया जाए। उसके पीछे रीज़न है कि अब जब कोरोना के बारे में मेरी किसी से बात होती है तो मैं देखता हूं कि उनमें एक आत्मविश्वास आ चुका है कोरोना को हरा देने का। अब उनमें डर नहीं है, भविष्य को लेकर आशंकाएं नहीं है, धीरे 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 वो खुल रहे हैं। और सच पूछे तो मैं जो कोरोना के बारे में बात करता था उसका पर्पज यही था कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं आपके मन में जो लगातार निराशा का अंधकार गहरा होता चला जा रहा है उसमें थोड़ी सी एक आशा की रोशनी पैदा कर सकूं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबको सही मायने में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सब ने कोरोना को हराने में अपना योगदान दिया है। और एक कम्युनिकेटर के नाते मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा एक दायित्व तो बनता है कि मैं अपने प्रिय श्रोताओं को इसके बारे में सूचित करता रहूँ, उनके मन में आशा का संचार करता रहूँ और साथ ही साथ जो संदेश दिया जाना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए वह संदेश भी देता रहूं। तो दोस्तों, आज से अब हम कोरोना वाले न्यूज को समाप्त करते हैं। इस बीच में कोई ऐसी घटना भी नहीं है कि उनको लेकर के मैं आपसे विशेष रूप से बात कर सकूं, इसीलिए आज हम लोग सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। और मुख्य विषय के लिए दोस्तों मुझे आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिल गया है और उसी आर्टिकल पर मैंने अपने मुख्य विषय को आज आधारित किया है। मेरे मुख्य विषय का अगर आप शीर्षक जानना चाहते हैं तो शीर्षक होगा आलोचनात्मक समीक्षा का एक उदाहरण। मेन एग्जामिनेशन में अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जाकर के देखेंगे तो पाएंगे कि किसी किसी प्रश्न में यह जोड़ दिया जाता है कि इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए या समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। लगभग लगभग ये एक जैसे ही होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ऑनलाइन क्लासेस के अपने स्टूडेंट को मैंने बहुत विस्तार के साथ समझाया है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, चित्रण कीजिए, तर्क दीजिए, डिस्कस कीजिए, इन टिप्पणी लिखिए, इन सब के क्या अर्थ होते हैं। यहाँ चूंकि मुझे आर्टिकल जो मिला है इसमें समीक्षात्मक मूल्यांकन की बात है तो इसीलिए यहाँ मैं समीक्षात्मक मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक तो समीक्षा कीजिए है या मूल्यांकन कीजिए है या आलोचना कीजिए है, सीधे सीधे एक शब्द है, समीक्षा कीजिए एक समीक्षा, मूल्यांकन कीजिए एक शब्द मूल्यांकन। लेकिन जब दो शब्दों का एक साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, देख रहे हैं दोनों शब्द हैं, समीक्षात्मक और मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आलोचना भी है और परीक्षा भी है। इसका मतलब है कि जब जो आप बात कह रहे हैं, आपने एक बात कह दी लेकिन वही बात सब कुछ नहीं है, उस बात पर भी कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, उस पे फिर जो प्रश्न उठेगा आप उसे उठाइए और फिर उसका उत्तर दीजिए। मतलब आप यूं कह लीजिए कि गहराई में जाकर जांच पड़ताल कीजिए। जब हम एक शब्द होता है आलोचनात्मक, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो उसमें हम गहराई में नहीं जाते, अपनी बात कहते चले जाते हैं और उसको थोड़ा सा फेंटने की कोशिश करते हैं, उलटने पलटने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट तरीके से नहीं, पॉइंट्स देकर के बात नहीं रखते, थोड़ा सा उसका आलोड़न विलोड़न करते हैं। आलोड़न विलोड़न का मतलब होता है उसे थोड़ा सा हम फेंटते हैं, जैसे ताश के पत्ते बांटने से पहले आप ताश के पत्तों को फेंट लेते हैं ना, अदरवाइज तो वैसे ही बांटना शुरू कर दीजिए। तो उस तरह से हम अपने विचारों को थोड़ा सा आप मथने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब आलोचनात्मक समीक्षा जैसा शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें और गहराई में जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो मैंने आर्टिकल लिया है वो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा हुआ आर्टिकल है जो शेखर गुप्ता जी का है, और ये मैं आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िएगा, तभी आप जो विषय मैंने चुना है आलोचनात्मक समीक्षा उसे आप समझ सकेंगे। इससे आप थोड़ा सा गहराई से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और लिखने की शैली पर जाइए कि उन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से, कही किस तरीके से है। आप पाएंगे कि शेखर गुप्ता जी जैसे एक बात कहते हैं, उन्होंने एक बात कही, और मजेदार बात यह है कि जब वो एक बात कहते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मैं जो ये बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं जो यह बात कह रहा हूं इस बात को लेकर के कितने तरह के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, कितने तरह के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, कौन क्या क्या सोच सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो एक चेयर पर बैठे हुए हैं और सामने आपकी तरह के 15-20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और उसमें शेखर गुप्ता जी एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ये देते हैं कि पिछले 7 सालों में, मैं इसी आर्टिकल को आधार बना करके कह रहा हूं, पिछले 6-7 सालों में भारत की जो स्थिति है वो खराब हुई है। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, और इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो विश्व की जो रैंकिंग, विश्व के जो इंडेक्स आ रहे हैं, चाहे वो भूख सूचकांक का मामला हो, चाहे जिसे हंगर इंडेक्स कहते हैं उसका मामला हो, लोकतांत्रिक स्थितियों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, भारत की स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है। इसी से उन्होंने शुरुआत की है। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आप ये स्टेटमेंट सुनते हैं। जब आप ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो स्टेटमेंट सुनने के बाद आप फिर शेखर गुप्ता जी से क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शेखर गुप्ता जी कहते हैं कि 7 सालों में स्थिति खराब हुई है, हमारे स्वास्थ्य इंडेक्स आप उठा करके देखिए, आप हंगर इंडेक्स उठा करके देखिए, दूसरे देश हमसे बेहद बेहतर कर रहे हैं लेकिन हम बुरा कर रहे हैं, पहले हम इतना था और अब हम यहां पहुंच गए। उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया। अब आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपने ये 7 साल लिया है, इसका मतलब है कि आप अभी जो सरकार है उसके पीरियड को ले रहे हैं, तो आप ये बताइए कि पहले 5 साल तक सरकार रही और इसके बाद फिर चुनाव हुए, और चुनाव में पहले से भी ज्यादा बेहतर सफलता सरकार को मिली। तो जब सरकार को बेहतर सफलता मिली तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्थिति खराब हुई है, क्योंकि जनता ने उनको पहले से भी ज्यादा सिर आंखों पर लिया है। बिल्कुल आपका तर्क सही है, क्योंकि लोकतंत्र यही तो है, यानी कि आप सरकार से खुश हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक स्थितियां खराब हुई है। अब शेखर गुप्ता जी इसके बारे में जवाब देंगे। वो जवाब दे रहे हैं कि देखिए, लोकप्रियता का अर्थ आप ये मत बताइए, नेतृत्व का अर्थ ये नहीं होता कि लोकप्रियता है, लोकप्रियता का अर्थ ये नहीं होता है कि नेतृत्व है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, जो शासन है वो केवल राजनीति से तय नहीं होता है, या वो जो भी है अपनी बातें वो कहेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे कि ठीक है दूसरे पक्षों में आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते चले जा रहे हैं, और हमारे पास आंकड़े हैं कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि रही है इस दौरान वो काफी कम रही है। इस तरह की वो अपनी बात कहेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो है ना, खासकर 5 सालों में तो हमारी जो आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ी है, इस तरह की बातें कहेंगे। फिर आप उन पर प्रश्न उठाएंगे, फिर आप उन पर प्रश्न उठाएंगे कि ठीक है जो धीमी पड़ी है तो क्या है, सरकार इतना पैसा पंप कर रही है, पब्लिक को दे रही है, किसानों को दे रही है, इतने सारे सार्वजनिक कल्याण के कार्यक्रम कर रही है, खाद्य सुरक्षा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इतना अनाज पैदा हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा कानून आ चुका है, 2 रुपये किलो गेहूं चावल मिल रहा है, ना इनके रेट अलग अलग है, मैं सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पोषण की कमी है। अब फिर शेखर गुप्ता जी कहेंगे कि ठीक है ये हुआ है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो भी हमारे देश की स्थिति हुई है या उदारीकरण के बारे में जो आर्थिक डेवलपमेंट हुआ भी है तो उसमें जो गरीब वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है, और इसके कारण जो हमारे परिवार हैं उनके पास जो एक पौष्टिक आहार है जिसमें दूध हो, अंडा है, मांस है, दाल है, सब्जी है, फल है, इसके लिए इनको खरीदने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं रह गया है, तो उनके पोषण आहार में कमी आती चली जा रही है, तो इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। तो फिर आप अपनी बात रखेंगे और फिर वो अपनी बात कहेंगे कि देखिए जो राजनीति है वो एक अलग मुद्दा होती है, अगर आप राजनीति को देखें तो अब राजनीति में जो सरकार सत्ता में आई है वो आर्थिक विकास की बात उतनी ज्यादा नहीं करती है, जो वोट मांगे जा रहे हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, या व्यक्ति की व्यक्तिगत लोकप्रियता है उनके नाम पर, या कह लीजिए कि हमारे लोकतंत्र में जो विपक्ष दल होता है वो चूंकि बहुत कमजोर हो गया है तो इसकी वजह से सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है या सरकार सत्ता में है, इसका आधार ये नहीं है कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है फ्रेंड्स कि वो अपनी बात कहते हैं, यानी कि यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को आप जांचने और परखने की कोशिश करते हैं, उस स्टेटमेंट के पक्ष में या उसके विरोध में आप एक वाक्य लिखते हैं और फिर उस वाक्य को जांचते हैं कि जो आपने लिखा है या जो आपने स्थापना दी है, जो बात आप कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है, उस पर भी आप प्रश्न उठा करके और उसका उत्तर देते हैं। दोस्तों इसे ही कहते हैं आलोचनात्मक समीक्षा। थोड़े से उदाहरण के जरिए मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और इस आर्टिकल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस नजरिए से पढ़िएगा कि मुझे इस आर्टिकल के जरिए आलोचनात्मक समीक्षा को समझना है कि ये होता कैसे है, बस यही बताना मेरा उद्देश्य था। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों ईमेल लिखने वाले मित्रों से मैं आज तीन अनुरोध करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अब बहुत से मेरे पास ईमेल ऐसे आने लगे हैं जिसमें स्टूडेंट अपने हाथ से लिख करके उसकी फोटो कर उसे स्कैन करके फोटो खींच करके मेरे पास भेज देते हैं। नो डाउट कि इसके पीछे कारण यही है कि मैंने कहा था कि पत्रों का जमाना खत्म हो गया, पत्र लिखे जाने चाहिए। दोस्तों लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हाथ से लिखे हुए पत्र कहाँ लिख करके भेजने चाहिए। मुझे ऐसे पत्रों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हैंडराइटिंग को समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप फोटो खींच के भेजते हैं तो किसी का हाथ हिल चुका होता है, कोई ब्लर्ब हो जाता है, किसी की हैंडराइटिंग पहचान में नहीं आती है, कोई इतना घसीट करके लिखते हैं कि प्लीज मेरा अनुरोध है कि आप हैंड रिटन लेटर मेरे पास न भेजें। दूसरा मेरे पास अनुरोध है, मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्लीज छोटे मेल भेजें। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास तीन तीन चार चार पेज के मेल आते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपके मेल के साथ न्याय हो, मैं बहुत धैर्यपूर्वक मेल्स पढ़ता हूं, सभी मेल्स पढ़ता हूं, इत्मीनान के साथ मैं आपकी बात सुनूं समझूं, तो उसे आप छोटा करके ही लिखें। मेरा तीसरा अनुरोध यह है कि जब आप मेल लिखें तो अपना नाम तो आप लिखते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने स्थान का भी नाम लिखें, अपने राज्य का भी नाम लिखें, क्योंकि उससे मुझे आपके मेल को सही संदर्भों में समझने में मदद मिलती है। और देखिए मैं जब नाम लेता हूं तो बेहतर होगा कि जब आपके नाम ले रहा हूं तो आपके स्थान का भी नाम लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो ये मेरे तीन अनुरोध हैं, प्लीज इसमें मेरी आप सब मदद करें। तो जो तीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेल लिखा है जिनके प्रति मुझे आभार व्यक्त करना है, उनके नाम हैं संजय साहू बागबाहरा से, चंद्रशेखर और प्रांशु मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।